ओम शांति। अभी हमारे सम्मुख विशेष महान अनुभूतियों से संपन्न आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी उपस्थित हैं। हम सभी इनका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं संक्षिप्त में भ्राता मोहन सिंघल जी का परिचय आपके समक्ष रखूंगी। सन 1963 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। आप ऐसी महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन के अंग संग का भी अनुभव किया है, और जब खास साकार ब्रह्मा बाप अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के समय में थे, उस समय आप माउंट आबू में ही थे और आपने बाबा की कर्मातीत अवस्था को बहुत नजदीक से देखा है। अर्थात 17 और 18 जनवरी आप माउंट आबू में ही थे। वर्तमान समय एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर के कोऑर्डिनेटर हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 7वें पर्यावरण जागृति अभियान का आपने नेतृत्व किया था। भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह द्वारा पर्यावरण श्री की उपाधि से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। सन 2004 में यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा एचआरडी के क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए भी आप विशेष सम्मानित हुए हैं। 1967 से 1996 तक ONGC में वरिष्ठ इंजीनियर के पद पर आप कार्यरत थे। 1996 में आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर आप ज्ञान सरोवर एकेडमी में कार्यरत हैं समर्पित रूप से। अभी तक आप विभिन्न विषयों पर 8 प्रदर्शनियों का निर्माण कर चुके हैं और आपकी 5 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। ऐसे अत्यंत सरल स्वभावी, निर्माण चित्त, सेवा भावी, संपूर्ण समर्पित ऐसे महान भ्राता मोहन सिंघल जी अभी हम सबके समक्ष एक बहुत ही गहन विषय पर अपने दिव्य उद्गार व्यक्त करेंगे। आपका विषय है कि हम प्रकृति जीत कैसे बने। तो अभी हम सुनेंगे भ्राता मोहन सिंघल जी से। माताओं से अनुरोध है कि रोटी डिपार्टमेंट में 25 माताओं की जरूरत है। आप सभी, आप में से जो भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। फिर से बोलिए ओम शांति। ये दोबारा हम सब लोगों ने ओम शांति क्यों बोला? क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं वह एक बात के इच्छुक हैं कि हम सब अपनी पुरानी प्रकृति पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, और साथ ही साथ जो प्रकृति के ये 5 तत्व कहे जाते हैं, 5 महाभूत, उन पर भी हम कैसे विजयी बने। क्योंकि प्रकृति शब्द के अर्थ ही 2 बताए हैं बाबा ने, मालूम ही है आप सबको। एक प्रकृति अर्थात अपना स्वभाव संस्कार, मेरी नेचर, कह देते हैं ना कि मेरी नेचर है। जो भी व्यक्ति का संस्कार होता है, स्वभाव होता है, उसको हम अपनी नेचर में गिन लेते हैं। तो एक तो हम अपने पुराने संस्कारों के ऊपर, पुराने स्वभाव के ऊपर कैसे विजयी बने, और साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा है कि तुम बच्चों को ये जो प्रकृति है, पांच तत्व है, इसको भी शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, और तब ही ये प्रकृति जो है अंत तक हमारा साथ देगी, हमें सहयोग देगी। क्योंकि इस प्रकृति का सृष्टि परिवर्तन में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, ये जो पांच तत्व हैं, यह सब विश्व के परिवर्तन में बहुत बड़े सहयोगी हैं। हम सभी को बाबा ने बताया ही है कि यह जो प्रकृति के तत्व हैं, परसों भी जो बाबा की मुरली चली ना, उसमें बाबा ने क्या कहा, कैसे ये प्रकृति के तत्व अभी अपना और जलवा दिखाएंगे। बाबा ने क्या क्या कहा, अर्थक्वेक भी होगी और पानी भी बहुत उछाल खाएगा, और ये जितने प्रकृति के तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब तत्व जो हैं अंत समय में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा पेपर बनकर आएंगे। और इसीलिए ही आवश्यकता है कि कैसे हम इन पेपर्स में सफल हो सके। आज का वरदान भी यही था ना, सफलता के ऊपर। क्या वरदान था आज का, कैसे क्या वरदान था, फुल स्टॉप लगाकर, और जो अंतिम ये पेपर आने वाला है उसमें फुल पास। और फुल पास की विधि बाबा ने क्या बताई, सफलता मूरत भवा, फुल पास होंगे, सफलता मूरत होंगे, विजयी होंगे, तब ही बाबा ने जो आज के मुरली का मुख्य सार था, विजय माला के मणके बनेंगे। तो विजय माला में पिरोने के लिए ये फुल पास होना ये एक बहुत जरूरी है। और फुल पास की विधि बाबा ने क्या बताई सफलता मुहूर्त की, सदा क्या अनुभव हो, सदा चढ़ती कला का अनुभव, कभी भी यहां तक कि रुकती कला का भी अनुभव ना हो। जो बाबा ने कहा गिरती कला की तो बात ही नहीं, संगम में सदा आगे ही बढ़ना है, लेकिन कभी कभी अगर अपना स्पीड उतनी नहीं होती है जितनी बाबा चाहते हैं, तो कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जो शायद उतनी हमारी चढ़ती कला नहीं है जो बाबा चाहते हैं, और कभी रुकती कला का भी अनुभव होने लगता है। इसीलिए बाबा ने अभी बताया है कि प्रकृति जीत बाबा, प्रकृति के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। प्रकृति जीत कौन बना है अभी तक, वो भी परसों बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया ना, कौन बना है प्रकृति जीत, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। बस प्रकृति के ऊपर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी। और उस मुरली में भी बाबा ने परसों जो बाप दादा ने मुरली चलाई उसमें उसी का ही वर्णन किया। बाबा ने कुछ डायरी का नाम लिया था, पुराने बच्चों ने डायरी देखी है, कौन सी, उस डायरी में बाबा ने क्या बताया, क्या लिखा हुआ उस डायरी में, ब्रह्मा बाबा ने क्या लिखा, क्या अनुभव लिखा है? देखो यहां पर ना पुरानी दो डायरियां हैं, और उस डायरी में भी बाबा ने अपने अनुभव लिखा है, जिसका वर्णन भी बाबा ने मुरली में किया। एक डायरी में पहले पहले ही जब 1936 में शुरू में ही बाबा ज्ञान में आए, तो आप सबने सुना ही होगा बाबा ने कैसे अपने पुराने संस्कार को जीता। संस्कार क्या होता है? नॉर्मली हम सब आत्माओं में कौन सा संस्कार होता है? देहभान का। देहभान में होते हैं ना, तो देह के संबंधी, देह के मित्र, देह के पदार्थ, वही सब याद आते हैं। तो देहधारियों की तरफ बाबा की बुद्धि न जाए, उसके लिए बाबा ने क्या पक्का किया? एक डायरी में क्या लिखा? पहला बाबा ने डायरी में लिखा, पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। सभी जो जो लौकिक संबंधी हो सकते हैं, बस बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा। क्योंकि बुद्धि व्यक्ति की कहां जाती है? पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता आदि आदि, जो भी देह के संबंधी होते हैं वहां बुद्धि जाती है। तो बाबा ने लिख लिख करके इतना पक्का करा, और उसके बाद बाबा की बुद्धि इतनी आत्मा अभिमानी बाबा हो गए कि खुद तो हो ही गए, लेकिन इतनी शक्ति कि जिस की तरफ भी बाबा देखते थे, जिसे भी दृष्टि देते थे, बस वो आत्मा भी देही अभिमानी हो जाती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल विदेही हो जाती थी। हमारा जीवन का ये अनुभव है। 1962-63 में जब ज्ञान में आए और बस बाबा से मिले, देखा जब पहली बारी बाबा की गोद में गए, तो बाबा ने इतना पक्का किया, बस जो भी बाबा के सम्मुख जाता था, बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, बस बाबा जैसे ही करता था, और बच्चे बस चुंबक की तरह, जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता, एकदम खींचते हुए चले आते थे। किसी को देहभान नहीं रहता था, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, या बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, इतना बाबा की आत्माभिमानी स्थिति है। तो बाबा ऐसे ही प्रकृति जीत का पहला ये लक्षण। हम सबको भी प्रकृति जीत बनना ही है, और इसीलिए यहाँ आए हैं, बैठे हैं। तो एक तो हम खुद ये देखें, अपने अंदर झांक के यहाँ पर जब इस पवित्र भूमि में आए हैं, कि मैंने कितना ये पाठ पक्का किया है। सुनते तो रोज हैं बाबा की मुरली, लेकिन कितना मैंने पक्का किया कि मैं भी जिस आत्मा की तरफ देखता हूँ या देखती हूँ, वो आत्मा भी देह का भान भूल जाए, वो आत्मा भी हमारे से ऐसे वाइब्रेशंस का अनुभव करे विदेहीपन का, वो आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी हो जाए भले थोड़े समय के लिए। फिर अब बाबा को कारोबार भी होता था, बस जब बाबा के बाहों में चले जाते थे, फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे थपथपा के, फिर जैसे देह में हाँ बच्चे, फिर लाके टोली खिलाते थे, फिर कुछ पूछना होता था, बात करते थे, फिर वो बच्चा बाबा की गोद से निकल के बाहों से जाता था, दूसरा आता था, तीसरा, इस तरह पूरी पार्टी बाबा से मिला करती थी। तो हमारा स्पर्श, हमारे वाइब्रेशन, हमारा जो एक एक संकल्प है, वृत्ति है, वो इतनी देही अभिमानी हो जाए, आत्मा अभिमानी हो जाए, दूसरे को भी वो हम उस चीज का सहज ही अनुभव करा सके। और साथ ही साथ एक तो बाबा ने ये पक्का किया, एक डायरी में ये लिखा हुआ है, दूसरी डायरी में क्या लिखा हुआ है, जो बाबा ने परसों मुरली में खास बताया। बाबा किसकी राज दरबार लगाते थे? कौन सी वाली कर्मेंद्रियों की? ये जो सूक्ष्म हमारी कर्म, एक तो ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन इनको भी चलाने वाली जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, उनकी बाबा वो दरबार लगाते थे। हमने वो बाबा का लेटर देखा है जो बाबा ने अपने मन को एड्रेस करके लिखा। मन बुद्धि संस्कार से बाबा बात कर रहे हैं। बस ज्ञान से पहले की ही बात है, ज्ञान में भी तब नहीं है और उससे पहले की ही हम सब ने जीवन कहानी में पढ़ा है। बाबा को वैराग्य, जैसे पहले से ही वैराग्य वृत्ति बाबा की जागृत हो गई और बस एकांत में, हिस्ट्री हॉल में आपने देखा होगा बाबा का एक चित्र है, ऐसे बस एकांत में बैठे हैं, बस मंथन में, गहन मंथन में डूबे हुए हैं। एकांत, बाहर का एकांत लेकिन उससे ज्यादा मन का एकांत। तो हम भी ये अपने अंदर झांक के देखें कि मैं भी कितना और एकांत प्रिय बनता जा रहा हूं, एकांत का रस के अनुभूति करती जा रही हूं। क्योंकि जितना हम एक की याद में अंत में चले जाएंगे, बस एक का अर्थ बाबा ने कई बताया है, संकल्पों की भी इकोनॉमी करना, विचारों की भी, एक के ही अंत में चले जाना, तो तब बाबा ने गहन अनुभूतियां की। ये दूसरी बात है बाद में, कि बाद में शिव बाबा ने उसको आधार बनाया, उस रथ को उसमें प्रवेश किया, लेकिन एकांत की स्थिति में बाबा गहन अनुभूतियां करते थे। तो एक हम ये भी अपने को चेक करते चले कि मैं भी कितनी एकांत प्रिय आत्मा होती जा रही हूं, कोई बाहर का ही नहीं बल्कि मन से भी बिल्कुल। और जितना जितना हम मन से भी एकांत प्रिय होते जाएंगे, उतना उतना एक की याद में सहज ही गहन अनुभूतियां कर सकेंगे। तो इसलिए एक ये भी मैं करें, बस इस बात को स्ट्रेस करना चाहता हूं कि बाबा ने जो कहा, क्योंकि कहा जाता है बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो संगठन में तो हम रहते ही हैं, चाहे जिस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं भी, तो वो तो हमारा चरित्र को का विकास करने का माध्यम है। क्योंकि जब संगठन में रहते हैं व्यक्ति का अपने ऊपर अटेंशन रहता है कि मेरी कोई भी कमी कमजोरी ऐसी प्रकट न हो, लेकिन जब एकांत होता है तो एकांत में व्यक्ति जाता है, वहां पर फिर बुद्धि के विकास का मार्जिन रहता है। क्योंकि संगठन में रहेगा, बातचीत करेगा और ये, तो बुद्धि को उतना एकांत नहीं मिलेगा, तो बुद्धि का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हम मन बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, डेवलप, तो उसके लिए मन को हम एकांत कुछ अवश्य दें, प्रतिदिन कुछ भी समय निकाल के। हमने बाबा को देखा, इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार बाबा के साथ 1962 में आए और 1969 तक बीच बीच में कितनी बार मिलने का सौभाग्य मिला, और देखते थे सारा कारोबार होते, कितने पत्र लिखना होता था, यज्ञ का पूरा कारोबार होता था, इतने सारे बच्चों की पालना होती थी, लेकिन फिर भी बाबा एकांत जरूर निकालते थे अपना, और बस झोपड़ी में एकांत में बैठे हैं, अमृत वेले सुबह सुबह 2 बजे उठ के और भी उससे भी पहले एकांत में बाबा चले जाते थे। तो जितना भी हमारा कारोबार हो, एक हम इस बात को करें। तो बाबा ने उस डायरी में, दूसरी वाली में यही लिखा हुआ है, बाबा मन से बात कर रहे हैं जैसे कि हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया, तेरे मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि मुझ आत्मा राजा को भी जैसे अपना गुलाम बना लिया, और तू जिधर जिधर कहता रहा मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। हम भी कह देते ना, क्या करें, बस मन बड़ा चंचल है, भक्ति मार्ग में तो यही कहते रहे हैं, तो ये भी उस समय की ही बात है जब ज्ञान में आने से कुछ समय पहले की है। और बाबा एकांत जब ये बात कर रहे, और जैसे जैसे बाबा को आत्मा का रियलाइजेशन होने लगा कि मैं आत्मा राजा हूं, ये सब मेरी कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि हे मन, लेकिन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा जैसे ऑर्डर कर रहे हैं। मुरली में भी परसों ये कहा ना कि जब हम अपने समान की सीट पर स्थित होते हैं तो शक्तियां भी हमारा ऑर्डर मानती हैं, नहीं तो कह देते हैं क्या करें, बस शक्ति को बुलाने की भी कोशिश करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन शक्ति नहीं आती है। तो बाबा समान की सीट पर पहले स्थित होके फिर बाबा ने मन को ऑर्डर किया। ऐसी बाबा बुद्धि से भी बात कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, जहां मन कहता रहा तू भी उसके पीछे भागती रही, और मैं राजा होकर भी बुद्धि तेरे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अब अपने सुमान में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं, अब तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा और न कि मैं तेरा कहना मानूं। तो बाबा ने जैसे अपने को स्थित किया कि मैं आत्मा राजा हूं और ये मन बुद्धि तुम मेरी कर्मेंद्रियां हो, प्रजा हो, बस ये बाबा अब हम बच्चों से भी चाहता है। हम अपने मन को इतना शक्तिशाली, आत्मा राजा अपनी स्थिति में ऐसी स्थित हो जाए कि बस हमारे कहे बिना, आत्मा के कहे बिना न मन सोचे न बुद्धि कोई ऐसा निर्णय दे, हमारे मन में संकल्प ही वो उठे जो सिद्ध होने वाला हो। और ये धीरे 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 यही हमने देखा बाबा को भी, कि पहले बाबा से जब कभी मिला करते थे, बाबा के पास जाते थे, बाबा की सारी जो समाचार सेवा का दिया करते थे, बाबा भी बड़े ध्यान से सुनते थे, बीच में करेक्शन देते थे, लेकिन धीरे 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 बाबा जितना अव्यक्त होते जा रहे थे, कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, जितना जितना प्रकृति जीत का अनुभव करते जा रहे थे, जितना प्रकृति जीत होते जा रहे थे, बाबा हर चीज को जैसे समेटते जा रहे थे। और बाबा के पास जब जाते थे, थोड़ा सा बाबा को सुनाया ये समाचार, बाबा ने थोड़ा सुना और थोड़ा सुन के बाबा बस हाँ बच्चे, बस बाबा समझ गया। हम लोग सोचते थे अभी तो हमने शुरू ही किया है समाचार सुनाना, लेकिन बाबा एकदम बस समझ करके उस बात को कंडेंस बहुत संक्षिप्त कर देते थे, और फिर उसके बाद धीरे उसका जो भी प्रश्न होता था उसका उत्तर देके बाबा फिर जैसे अपने में विलीन हो जाते थे, बिल्कुल जैसे कि पर्सनल व्यक्तिगत पुरुषार्थ की तरफ बाबा का धीरे धीरे इतना ज्यादा अटेंशन बढ़ता जा रहा था। सेवा में भी थे, हर बच्चे की सुनते भी थे, लेकिन पहले जो इतना समय दिया करते थे एक एक बात को डिटेल में, अब ऐसी बात हो गई थी कि बिल्कुल संक्षिप्त में। और यही बात थी, जितना आत्मा प्रकृति जीत कर्मातीत होती जाती है तो उसका ध्यान बस वहीं जाता है जहां पर करेक्शन देनी होती है कोई भी बात। बाबा के पास इतने सब पोता मेल आते थे, इतना सारे लेटर आते थे, हमने खुद देखा व्यक्तिगत कितनी बार, पर जितने पेज की पहले होते थे तो अपने साकार मुरली में सुना होगा, बाबा कहते थे अपनी कर्म कहानी लिख करके दो, हा? तो बस भगवान की श्रीमत है तो लिख कर देते थे, लेकिन छोटी आयु 16-17 साल कुमार जीवन, इसलिए कोई ऐसी बात तो होती नहीं थी, लेकिन बाबा के पास जितने लोगों की वो आती थी, बस बड़ी बड़ी भी होती थी 10-12-15 पेज 20 25 पेज भी होते थे किसी के, बस बाबा एक एक जरा पलट के बस वहीं पर ही बाबा का ध्यान जाता था, वहीं पर ही उस जगह जहां पर उस व्यक्ति को जो अटेंशन देना होता था, जो ध्यान देना होता था, जिससे कि इसमें समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है और संबंधित व्यक्ति को करेक्शन भी मिल जाती थी। तो ये भी हम अपने में चेक करते चले कि धीरे 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 क्या हमारा भी ऐसा ही होता जा रहा है कि जहां पर जिस जगह जो आवश्यकता है उतने उसी जगह बस हमारा अटेंशन, बाकी जो कार्य चल रहा है। और इसी को ही बाबा ने कहा करण करावन हार। क्या कहा? मैं आत्मा कौन हूं? करावन हार, ये मेरी कर्मेंद्रियां करण हार। तो मैं करा रही हूं इन कर्मेंद्रियों से, बस जहां पर भी ना कोई भी कर्मेंद्रियां नेचुरल वे में जो कर्म कर रही हैं वो कर रही हैं, जहां पर भी कर्मेंद्रियों को चेक करने की जरूरत है करावनहार का पार्ट, बस वहीं पर ही हमारा तुरंत ही उस तरफ अटेंशन जाए और उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई भी ऐसी बात न हो, कर्म न हो जो कि किसी भी रीति से मर्यादा के विपरीत हो। शुरू में बाबा हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए 62-63, उस समय जब बाबा की मुरलियां चला करती थी, साकार मुरलियां बाबा जो चलाते थे, तो उस समय ज्यादातर ये कि भाई मनसा में तो तूफान अंत तक आते रहेंगे, लेकिन कर्मणा में कोई विकर्म नहीं करना है, कोई ऐसा बात नहीं करनी, नहीं तो इससे विकर्म बनता है। फिर धीरे धीरे बाबा सूक्ष्म होकर वाचा की तरफ ले आए कि वाचा के द्वारा भी किसी को कुछ दुख न हो, अगर दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, कोई कठोर शब्द नहीं। और फिर धीरे धीरे जितना बाबा और फिर सूक्ष्म की तरफ कि मंशा वृत्ति के द्वारा स्वप्न में भी कोई ऐसा वो न हो जो हम न चाहते हो, और वो हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया वो हमारी आज्ञा के विपरीत कर्म करें, स्वप्न भी हमारे इतने सतो प्रधान हो जाए, मन के संकल्प भी इतने ऊंचे हो जाए, और कोई भी मन के संकल्पों में भी ऐसी सतो तक की भी स्टेज ना हो, सतो प्रधान तक, बाबा इतना ऊंचा हम बच्चों को ले जाते। तो धीरे धीरे जो बाबा जैसा अव्यक्त कर्मातीत अवस्था प्रकृति पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे थे, वैसा ही बाबा की सूक्ष्म वो सारी की सारी मुरली वो सब देखने में आती। और बाबा क्या, जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, प्रकृति जीत, पुरानी प्रकृति, पुराना स्वभाव संस्कार, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते जा रहे थे, उतना उतना देखते थे कि बाबा बिल्कुल ही जितना समय यहां आवश्यकता है उतना समय ही जैसे इस देह में रहते थे, नहीं तो देह से न्यारेपन की स्थिति में। कितनी बार देखते थे पार्टियां आती थी, पार्टी के साथ आए, बस बाबा बैठे हैं मिलने के लिए, तो आंख भी खुली है बिल्कुल, लेकिन जैसे देह यहां पर है और मन से बाबा जैसे शिव बाबा के पास है। सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन, परम धाम, बुद्धि जैसे कि उधर है। और कितनी बार ऐसा होता था ब्राह्मणी या कोई भाई बहन आके बाबा 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 का ध्यान खिंचाने के लिए कोई पूछना होता था, आते थे तो बाबा को जैसे कई बार थोड़ा जर्क जैसा, हैं बच्चे कुछ कहा, तो भौतिक रीति से जैसे कई बार बाबा यहां होते थे, लेकिन मानसिक रीति से बिल्कुल अलग दुनिया में। और फिर बाबा जैसे इस देह में आते थे और फिर हाँ बच्चे कुछ कहा, फिर कारोबार की कुछ बात की जो कुछ, और फिर बाबा जैसे इस देह से न्यारे हो जाते थे। तो ये अब हमें भी अपने अंदर ये देखते चलना है कि अगर कोई यहां उतने समय हम देह में आए, जैसे जब जितना कोई कारोबार है जिस कार्य के लिए हम निमित्त है, और नहीं तो जैसे विदेही बनने का हमारा पूरा का पूरा ये अभ्यास हो, इस देह से हम न्यारे होते चले। ये बाबा की सब रियल जो चीजें हैं जो हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो वर्णन कर रहे हैं। और इसी कारण ही बाबा जैसे नंबर वन प्रकृति जीत जैसे कर्मातीत अवस्था को बाबा प्राप्त कर गए। और बाबा में क्या देखा, जितना जितना बाबा न्यारे इधर होते जा रहे थे तो संकल्प पर भी बाबा का, अपने विचारों पर भी इतना ज्यादा अटेंशन हो गया था। प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार का जैसे रिंचक मात्र भी, नाम मात्र भी जैसे वो असर नहीं था और मन में वो ही संकल्प आते थे जो कि सिद्ध होने वाले होते थे। और इस कारण से क्या होता था कि बाबा जो भी बच्चे आते थे बाबा के सम्मुख, तो कितनी बार वो ये अनुभव करते थे बाबा के सम्मुख कोई बात लेके जा रहे, हम बाबा से ये पूछेंगे और बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और बाबा वो ही बात पूछ लेते थे जो बात करने के लिए हम लोग जाते थे। तो बाबा कितनी बार प्रश्न भी बता देते थे, हमारे मन में जो विचार चल रहा है वो भी बता देते थे और उसका सहज उत्तर भी दे देते थे। कितनी बार हमारे साथ ये हुआ, एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, और विशेष करके अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को जब बाबा के पास ही हम मधुबन में आ गए थे 17 की सुबह, और उन दो दिनों में तो हमने ये कितनी बार ये अनुभव किया कि बस बाबा के सम्मुख जा रहे हैं, बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और बाबा बस देखते ही तुरंत, हाँ बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसा ये हो जाएगा। तो उस काफी कुछ दिनों के बाद हमने जब पूछा बड़ों से, हमारी बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी होते थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने इसका उत्तर दिया कि देखो जब जो आत्मा जितनी कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, संपूर्णता के निकट होती है, वो आत्मा अपने मन के संकल्पों के ऊपर भी संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है। अपनी कोई भी इच्छा, चाहे शुद्ध इच्छा भी, सेवा की भी इच्छा हो कुछ, वो भी इच्छाओं से जैसे परे होती है। और उसका प्रमाण क्या होता है, उसका प्रमाण ये होता है कि उसके सम्मुख जो भी आत्मा अपनी कोई इच्छा लेकर के आती है ना, तो उस इच्छा को वो तुरंत ही पढ़ सकती है और उस इच्छा को वो पूर्ण कर देती है। क्योंकि दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये जानना पहले जरूरी है कि उसकी इच्छा क्या है, और वो हम तब पढ़ सकते हैं जब हमारी अपनी कोई इच्छा ना हो, अपनी इच्छाओं के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली हो, हम इतने तक प्रकृति जीत बन गए हो अपनी पुरानी प्रकृति के ऊपर कि हमारी इच्छा के विपरीत कोई संकल्प न उठे। तो इस रीति से बाबा को देखते थे। मैं अपना अंतिम दिन का वो ये अनुभव सुनाना चाहूंगा। 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा ऐसे रात्रि क्लास में आए, आप लोगों में से भी ऊपर गए होंगे, हिस्ट्री हॉल देखा होगा, वहां पर बाबा रात्रि क्लास कराते थे। तब तो वही था, ना कोई ओम शांति भवन था, ना मेडिटेशन हॉल था, ना ये कम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं था। ये है सन 1969 की बात, जनवरी 18 तारीख की बात। तो बस बाबा ने उस दिन सुबह तो कोई भी क्लास नहीं कराई, उस दिन बस बाबा आए क्लास में सुबह और योग कराया। बस वैसे हमेशा की तरह बाबा पहले योग कराते थे, कभी अगर रिकॉर्ड बजता था, पहले तो बाबा की मुरलियां काफी साकार, कुछ रिकॉर्ड हमारे गीत तो होते नहीं थे उन दिनों, तो जो बाहर के अच्छे अच्छे गीत होते थे जिन्हें कई बार बाबा ने कहा कि मैं बच्चों से टच करके वो गीत बनवाता हूं, लिखवाता हूं। हमें याद आता है कि ऐसे गीतकार, भरत व्यास करके भी एक गीतकार हुआ करते थे, तो वो एक बार आबू में आए थे, और आबू में आके उन्हें कहा कि भाई जब वो आए कि भाई ऐसे आप एक दिन उठो, हमारा जैसे शिविर थोड़ा सुबह के वक्त होता है, आप शिविर अटेंड करो। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हंसी में कहा कि देखो मैं तो भाई सूर्यवंशी हूँ, मैं तो हमेशा सूर्य निकलने के बाद ही उठता हूँ, क्योंकि हम रात को हम लोग बहुत देर तक काम करते हैं, 1 बजे 2 बजे तक, तो इसलिए सुबह नहीं उठ पाते हैं, और इसलिए मैं तो सुबह उठ नहीं सकता। फिर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कितनी बार मैं सुबह जो है ना, कभी मेरी नींद एकाएक ही 3 बजे खुल जाती थी, 3:30 बजे खुल जाती थी, और मैं सोना चाहते हुए भी नहीं सो पाता था। तो मैं सोचता था कि चलो जब मैं नींद ही नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कागज और पेन लेके बैठ जाता था और तब मैं ये गीत लिखा करता था। और उन्होंने जो उस समय गीतों का वर्णन किया ना, उनमें से ही अधिकतर गीत हमारे मुरली के गीत हैं, जो कि हमारे मुरली में बाबा कई बार आता है, भाई जाग सजनिया जाग, या तूने रात गवाई सोए के, आदि आदि जितने। तो ऐसे बाबा जो कहते हैं कि मैं टच करके बच्चों से बनवाता हूँ, वो उनके मुख से ही, उन्होंने तो न ये मुरली सुनी न कभी बाबा को देखा, कुछ नहीं, लेकिन वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जैसे मैं जैसे कोई लिखवा रहा है, और ऐसे अच्छे अच्छे गीत जो कि बड़े पॉजिटिव, वो गीत जैसे कि मुझसे कोई लिखवा रहा है। तो बाबा ने जो ये काम करवाया, एक सेवा होती है जो मुख के द्वारा, कर्मों के द्वारा, लेकिन एक ये सेवा जो है अपनी मंशा के द्वारा, वृत्ति के द्वारा। और बाबा के समय में कोई भी हमारा विदेशों में सेंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन बाबा कहता था कि मैं आह्वान कर रहा हूँ मेरे अपने ऐसे विदेशी बच्चों का, जो आएंगे बहुत बाबा के सेवा में निमित्त बनेंगे। और बाबा ने मंशा सेवा के द्वारा उन आत्माओं का आवाहन करना जैसे पहले से ही शुरू कर दिया था। तो ये है मंशा सेवा, जो बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है कि बस मेरे बच्चे भी हम, क्योंकि हर एक बच्चा हर जगह तो जा नहीं सकता, तो मन के संकल्प हमारे इतने शक्तिशाली हो जाएं, जैसा हमारी जानकी दादी जी भी बताते हैं कितनी बार बस मंशा सेवा के द्वारा ही और चक्कर लगाते हैं। कभी विश्व का गोला हमारे हाथ में हो और हम जैसे कि संकल्प, पावरफुल संकल्प के द्वारा उस गोले में सृष्टि की आत्माओं को योगदान कर रहे हैं, कभी हम भी फरिश्ते की तरह ऊपर बस उड़ जाएं और ऊपर से खड़े होकर नीचे सृष्टि है उस सृष्टि में की आत्माओं को योग का और शक्तियों का दान कर रहे हैं। कभी बाबा के साथ साथ जैसे हम पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं और ऊंची स्थिति में ऊंचे देख रहे हैं और नीचे की आत्माओं को योगदान कर रहे हैं। तो ये कहने का भाव यही है कि जितने जितने हमारा अपने संकल्पों पर नियंत्रण होता जाएगा, जैसे बाबा का तो हमने प्रत्यक्ष देखा, और जैसे अभी हमारी वर्तमान में दादियां उसका स्वरूप देखने में प्रत्यक्ष आती हैं कि उनके अंदर ना कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी महानता है, कितनी शक्तियां उनके अंदर, इसीलिए उनकी एक एक दृष्टि के भी ना हम सब लोग वो चाहक रहते हैं, एक दृष्टि मिल जाए, वो शक्तियों का संचार, जैसे बाबा के नैनों से शक्तियों का संचार होता था, अभी उसका साकार रूप हमारी वर्तमान में दादियां। तो अंतिम मुरली की मैं बात कर रहा था, 18 जनवरी की बात। तो बाबा सुबह क्लास में आए, बाबा ने दृष्टि दी, और फिर दृष्टि देके बाबा ऐसे करके थोड़ा गला साफ करते थे, जैसे इशारा होता था, रिकॉर्ड बंद हो जाता था, लाल लाइट की बजाय सफेद लाइट हो जाया करती थी, और फिर हम सब लोग डायरी पेन लेके तैयार हो जाते थे कि अब बाबा की मुरली चलेगी, अब हम लोग मुरली लिखेंगे। तो बाबा जैसे तैयार हैं साकार में, लेकिन शिव बाबा की जैसे यही प्रेरणा हो कि आज मैं बच्चों को शक्तियों से भर दूं, फिर बाबा योग करने लगते थे। जब बाबा ने नहीं बोला और दृष्टि देने लगे, सभी बच्चे भी फिर उसी रीति से बाबा से दृष्टि लेने लगते थे। फिर थोड़ी देर तक और 5-10 मिनट गुजरे, फिर फिर उसके बाद फिर बाबा का जैसे मूवमेंट से ऐसा लगा कि अब बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन फिर बाबा ने मुरली नहीं चलाई और फिर दृष्टि देने लगे। तो इस तरीके से 18 जनवरी की सुबह बाबा ने केवल योग ही कराया। उस दिन 18 जनवरी की सुबह कोई भी बाबा की मुरली नहीं चली। और फिर बाद में बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा क्लास से चले गए। तो थोड़ा तो हरेक को यही संकल्प हुआ, लेकिन उस दिन बस यही कि बाबा को, शिव बाबा को, बाप दादा को यही हो कि आज मैं बच्चों को शक्तियों से संपन्न कर दूं। खैर सारा दिन भर हुआ, बाबा ने सारा कारोबार पूरा लिखे थे। प्रकृति जीत जब व्यक्ति बन जाता है तो उसके सामने भविष्य भी बिल्कुल स्पष्ट जैसे आने लगता है। बाबा की जैसे मुरली भी आती है ना कि जब अपने गांवड़े के नजदीक पहुंचते हैं, समुद्र से स्टीमर से आ रहे होते हैं तो किनारे के झाड़ दिखने लगते हैं और लगता है कि हाँ अब हमारा जगह आने वाली है। तो ऐसे ही जितनी जितनी आत्मा संपूर्ण कर्मातीत होती हुई, प्रकृति जीत होती हुई, जितना कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट पहुंचती जाती है उतना उसका भविष्य उसे एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। और जैसे इस भविष्य स्पष्ट दिखता है वैसी उसको अनुभूतियां होती हैं। जैसे आज बाबा ने आज की मुरली में था ना, बच्चा और बूढ़ा जैसे समान। बाबा इतनी उम्र थी लेकिन बाबा की खुशी देखने लायक होती थी। जो हिस्ट्री हॉल में लेफ्ट साइड में उधर ना एक लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र और कृष्ण का, विष्णु कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र रहता था, छोटे कृष्ण। तो बस बाबा को कई बार खांसी भी आती थी और कई बार ऐसा लगता था बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण देखो बस बच्चे देखो अभी तो ये पुराना शरीर हो गया है और कल बाबा जाके ये बनेगा, देखो ऐसा कृष्ण है। और बस कितना बाबा को होता है बस अब तो ये दुनिया गई की गई, अब मैं जाके ये बनूंगा। अरे बच्चों को भी खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि कोई भी गम की बात ना रहे। और बाबा करके बताता था, बच्चे जानते हो खग्गियां कैसे है, तो ये ऐसे बाबा करके बस देखने में ही एकदम आता था खुशी एकदम चेहरे पर ऐसी झलकती हुई जो पूरे दिन भर हमेशा खुशी में एकदम चमकता हुआ चेहरा। तो ये हम भी अपने को चेक करते चले, क्या बाबा के सामने समस्या नहीं थी? इतना बड़ा यज्ञ था, इतना बड़ा कारोबार था, लेकिन कभी भी कोई भी चिंता की रेखा, कोई समस्या की बात बाबा के चेहरे से रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। और बस वही खुशी, कल बाबा जाके ये बनेगा, कल बस हम जाके ये पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर में जाएंगे, बस वहां अपना राज्य भाग करेंगे। ये वही बाबा ने कहा, आज भी जो बाबा ने मुरली में बोला ना, जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनकी निशानी क्या होगी, आज मुरली में बोला ना बाबा ने, क्या बस वो यही प्लान भी बनाते रहेंगे, उनकी बुद्धि में आएगा, मैं जाके ऐसा महल बनाऊंगा, ये प्रिंस बनूंगा, ऐसा ऐसा ये होगा। वो उनके अर्जो कम पद पाने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये सब बात नहीं आएगी। तो देखो कितना स्पष्टीकरण बाबा करते चलते हैं। अगर हमारी बुद्धि में ये बात उतनी नहीं आती है तो इसका मतलब अब हमें लानी ही चाहिए कि हाँ हम जाके ये बनेंगे, ऐसा हमारा ये होगा, सोने चांदी के हीरे से जड़े हुए ये महल होंगे। बुद्धि में जितना जितना ये लाते रहेंगे तो जैसे हम अपना सीट पक्की कर रहे हैं कि हम उच्च पद के अधिकारी हैं, राज परिवार के अधिकारी हैं। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान बाबा जैसे करता जा रहा है। ऐसे महान विचारों को, ऐसे विचारों को बार बार बुद्धि में लाना चाहिए। और जितना जितना ये बुद्धि में आता जाएगा उतना उतना ये दुनिया की बातें ना वो सब निकलती जाएंगी। तो उस दिन बाबा को देखा, सारा दिन बाबा ने कारोबार किया, पत्र लिखवाने हो जितना, ईशु दादी जो यहाँ पर हैं उनसे कहा जितने पत्र लिखने हो। तो बाबा के पत्र भी हाँ देखे हैं आपने किसी ने? देखो ऐसे पत्र होते थे, अभी हमें ख्याल नहीं रहा, अगर होता तो आपको लाके पत्र भी दिखाते थे। तो बाबा लाल लाल पेन से बाबा पत्र लिखा करते थे सिंधी में, और बस छोटा सा इतना कागज होता था, और बस नूरे रतन सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे फलाना बच्चों का नाम लिख करके और फिर बाबा पत्र लिख करके कि हाँ बाप को पहचाना है, 21 जन्मों का वर्षा पूरा लेना है, अधिकारी बन करके विश्व को अधिकार दिलाना है, आदि आदि हर जितने लाइन का पत्र होता था एक एक अक्षर में बाबा का ज्ञान और वरदान भरा हुआ होता था। और उससे क्या होता था, और चूंकि वो तो सिंधी में होता था तो बीच बीच में जो दो लाइनों के बीच में जगह होती थी उसमें नीले इंक से लाल उससे बाबा लिखते थे, लाल पेंसिल से और नीले उसमें पेन से, जैसे यीशु दादी उसका हिंदी में अनुवाद करके पत्र का, क्योंकि सिंधी तो हर एक कोई पढ़ नहीं सकता, वो हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया करते थे। तो इस तरीके से बाबा का वो गोल्डन पत्र हुआ करता था। तो सारा दिन लिखवा के शाम हुई, और मधुबन में शुरू से ये है कि भाई क्लास जो होती है ना वो पहले से, मतलब रात को 9 बजे रात्रि क्लास होती थी, जब सब भोजन वगैरह कर करा के उसके बाद 9 बजे बाबा भी तभी क्लास कराया करते थे। लेकिन उस दिन 18 जनवरी 1969 को बस बाबा को एकाएक ही करीब पहले लगभग 7:30 के करीब बाबा ने एक निमित भाई को बुला के कहा कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा और ये सबको बता दो। तो बस जल्दी जल्दी सबने भोजन कर लिया और पहले एक घंटी रखी रहती थी, बस हिस्ट्री हॉल के बाहर ही उसे बजाई, उसका सिंबल होता था जैसे स्कूलों में घंटी होती है ना, तो वो एक इंडिकेशन होता था कि भाई कोई मैसेज है। हा? तो सब इकट्ठे होके हाँ, तो तब बताया कि बाबा जल्दी क्लास कराएंगे, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। तो सब लोग जल्दी इकट्ठे हो गए और उस दिन बाबा की क्लास जल्दी हुई। हम तो चूंकि प्रत्यक्ष वहां पर थे तो देखा कि अब चूंकि बाबा तो बिल्कुल कर्मातीत बन गया था, जैसे ही बाबा हॉल में प्रवेश किया तो जैसे लगता था कोई लाइट जैसी पूरी की पूरी चलती हुई आ रही है, एक एक अंग से लाइट लाइट जैसे झलकती हुई, चेहरा चमकता हुआ। और उस दिन बाबा ने वो पहना हुआ था बाल कृष्ण का सा ड्रेस, लंबा टोपा ऐसा लंबा सा जो बच्चे लोग पहनते हैं ना, वो टोपा पहना हुआ, तो बिल्कुल बाल कृष्ण का सा रूप बाबा का लग रहा था। तो बाबा आया और सर्दी का मौसम तो वहां के बाबा समधी पर बैठ के फिर बाबा ने पूरी की पूरी वो मुरली चलाई। और उस मुरली की विशेषता ये थी, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है, वो अपने संपूर्ण कर्म भोग के ऊपर ना हमारा जितना योग बल होता है वो पूरा विजय प्राप्त कर लेता है। फिर कर्म भोग कोई भी शरीर का परेशान नहीं करता। इसलिए उस दिन की बाबा की आप मुरली देखो तो उस दिन की जो मुरली थी उसकी विशेषता खास ये थी कि उस दिन बाबा की हालांकि तबीयत भी थोड़ी सर्दी की वजह से थोड़ा ठीक नहीं थी, सुबह भी ठीक नहीं थी, थोड़ा खांसी और इतना पीक सर्दी का मौसम, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी जैसे मुरली में खांसी भी नहीं आई, क्योंकि कर्मातीत अवस्था थी और कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा अपने भोग जो भी शरीर के कर्म भोग हैं उन पर पूरी विजय प्राप्त कर लेती है। तो बाबा ने पूरी मुरली एकदम ऐसे चलाई कंटिन्यूअस, और कर्मातीत बाबा की अवस्था है उसका लक्षण हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। क्या अनुभव किया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आत्मा कर्मातीत अवस्था को लगभग प्राप्त कर लेती है, प्रकृति जीत पुराने अपने संकल्पों के ऊपर भी जिसकी पूरी जीत हो जाती है, वो दूसरे के संकल्पों को तुरंत ही कैच कर लेते हैं। तो उस दिन बस हम भी सम्मुख बैठे हुए थे बाबा के, हिस्ट्री हॉल तो छोटा ही है देखा है आपने, बस बाबा मुरली चला रहे थे। अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना तो भले हम सब अव्यक्त बाप दादा से मुरली सुनते हैं, हर एक कोई सबको टोली भी मिलती है, फिर भी सूक्ष्म में कईयों की ये भी इच्छा होती होगी कि भाई मुझे भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, या बाबा की दृष्टि एकदम निकट से मिल जाए, या बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, सूक्ष्म में इच्छा होती है ना। तो हम तो सम्मुख बैठे हुए थे और तब तो पार्टियां ज्यादा थी नहीं, दो चार लोग ही बाहर के आए हुए थे, तो बस संकल्प हुआ कि बाबा कुछ हमारे लिए भी कुछ महावाक्य उच्चार है। संकल्प में जैसे बस सेकंड के लिए संकल्प ही आया, और चूंकि वो आत्मा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था, संपूर्ण प्रकृति जीत जैसे पुराना संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी, तो जैसे बाबा ने तुरंत ही जैसे वो कैच करके ना, और तुरंत ही नाम लेकर के मुरली में कुछ महावाक्य उच्चार दिए। तो देखो ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण होता है, और ये ही पार्ट अभी हम बच्चों को भी प्ले करना है। जो बाबा ने कहा है कि अंत समय होगा तो दुखी आत्मा आपके सम्मुख आए वो हंसती हुई जाए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति का अनुभव करके जाए। वो कब होगा? जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या बने हुए होंगे, हमारी अपनी इच्छाएं नहीं होंगी, तो हम दूसरों की इच्छाओं को ना सहज पूर्ण कर सकेंगे। उसका प्रैक्टिकल वहां देखा कि मन में जैसे संकल्प आया और तुरंत ही कुछ सेकंड में बाबा ने, वो भी वैसे पता ना चलता लेकिन नाम लेके जब बाबा ने ना वो उसका वर्णन किया, और तो ये हुआ कि देखो ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की आत्मा की निशानी। तो अभी हम सब बच्चों को, एक एक बच्चे को मास्टर ब्रह्मा का पार्ट प्ले करना है। हम उनके बच्चे हैं, जो बाबा ने कहा है अंत में पूरे सृष्टि की आत्मा हमारे सम्मुख बहुत इच्छाएं लेकर आने वाली है, त्राही त्राही चारों तरफ मचेगी, और हम उनकी इच्छाओं को तब पूर्ण कर सकेंगे हमने जब अपने को तैयार किया हुआ होगा। तो अभी हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो दुनिया की, बस अब मुझे इच्छा मात्रम अविद्या होके जाना है। दूसरे की तरफ हम ध्यान ही न दें, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, दूसरा चाहे जितना कम पूरा 100% पॉजिटिव ना हो, लेकिन मुझे 100% पॉजिटिव होके चलना है। मुझे गुलजार दादी जी का वो संदेश याद आता है, एक बार दादी जी ध्यान में गए तो उन्होंने वो संदेश सुनाया कि जब मैं बाबा के पास गई ना तो मैंने देखा कि बाबा बैठे हैं, और बाबा के सामने दो लाइनें लगी हैं। अब हैं सब श्वेत वस्त्रधारी बीके हैं, लेकिन दो लाइनों में हैं, क्योंकि सभी श्वेत वस्त्रधारी हैं, सभी के बैच लगा हुआ है और सभी आत्माएं जैसे वहां पर हैं, लेकिन एक तरफ की आत्माएं बड़ी खुशनुमा चेहरा, उनके चेहरे पर झलक प्राप्तियों की झलक, और दूसरी वाली लाइन में हैं वो भी बीके, लेकिन उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं है, साधारण रीति से जैसे दो लाइन लगी हुई है। तो बाबा ने पहले पूछा, फिर बाबा ने खुद ही उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे की ये जो एक तरफ लाइन है ना, ये है प्राप्ति स्वरूप बच्चों की लाइन, और जिनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन दूसरी लाइन जो है ना, ये जैसे है पश्चाताप स्वरूप बच्चों की लाइन है। दोनों ही बीके, बाप एक ही समय पर एक ही ज्ञान सुनाते हैं, एक ही बात बताते हैं, एक ही संगम युग है, सब कुछ वो ही है, फिर भी ये दो लाइन कैसे बन गई? फिर बाबा ने खुद उसका उत्तर दिया, क्योंकि हमारी दादियां जब जाते हैं या ध्यान में संदेशी जाती है तो बाबा का तो कुछ ना कुछ रहस्य अपना होता है। तो क्या बात हो रही थी? याद है मतलब सबको? हाँ, तो जो बाबा बता रहे थे कि एक प्राप्ति स्वरूप बच्चों की लाइन, और ये जो दूसरी लाइन है, तो एक ही समय एक ही ज्ञान एक ही सारी बात पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी दो कैटेगरी कैसे बन गई, दो प्रकार के बच्चे कैसे हो गए? तो बाबा ने फिर बस की एक बात के आधार पर ये दो लाइन हो गई। कौन सी बात होगी? तो बाबा ने बताया कि देखो जो ये प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सदा अपने को देखा, दूसरों को नहीं देखा कि वो ये कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है, नहीं, बस मुझे बनना है। उन्होंने अपने को और बाप को देखा, बाबा को। बाबा ने ये कहा, ये किया, बस बाबा के कदम पर कदम रख के वो बच्चे जो चल रहे हैं वो ये प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो गए। ये पहली लाइन में आ गया। और जिन्होंने दूसरों को देखा, अरे ये तो इतना 20 साल से ज्ञान में है, अभी तक इनमें ये भी है, चलो मुझ में भी अगर ये कमी रही तो क्या हो गया, ये 50 साल से ज्ञान में है, इनमें भी ये कमजोरी अगर है तो हमारे में हुई तो कौन सी बड़ी बात हुई। जो दूसरों को देखते रहे ना, वो दूसरी लाइन में आ गए, जो पश्चाताप स्वरूप के बच्चों की लाइन। फिर बाबा ने दिखाया कि अभी भी ना, जैसे कुछ बच्चे दूसरी से पहली लाइन में आ रहे हैं, अगर ये रियलाइज हो जाए कि चलो अभी तक जो हुआ सो हुआ ड्रामा, लेकिन अब मुझे आज से बस किसी को नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को देखना है, और बस मैं, मेरा बाबा, बाबा के कदम में कदम रखते हुए, महान आत्माएं जो हमारी निमित्त बने हुए दादियां हैं, निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, उनके बस डायरेक्शन लेते हुए हमें अब आगे बढ़ते चलना है, तो बस वो पहली लाइन में आ जाएंगे। तो बाबा ने यही बताया कि अब बस हर बच्चे का यही लक्ष्य, क्योंकि बाबा हर बच्चे को देखना चाहता है कि वो पहली लाइन में हो, मेरे राजा बच्चे हो, तो वो तब हो सकते हैं। बस अब अपने को देखते चलो, क्योंकि ऐसी बहुत सीन आएंगी जब भी अगर दूसरे को देखा ना, तो वहां पर बच्चों की रुकती कला या नीचे आने की कला हो जाएगी। इसलिए अब दूसरे को देखना ही नहीं है, जो करेगा सो पाएगा, लेकिन मुझे अपने को और बाप को देखते हुए चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। तो इस तरीके से वो वहां पर, जब ये किस रेफरेंस में बात याद आ रही थी, बाबा के, कि अंतिम मुरली बाबा चला रहे थे और एक बार भी बाबा को वो खांसी नहीं आई, कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली बाबा ने थी। उसके बाद मुरली पूरी हुई, बस बाबा जैसे उठे, उठ के बस खड़े होके फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे, बस बार बार हो, फिर बाबा एक कदम चले दरवाजे की तरफ और बाबा फिर रुक करके फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे, और विशेष करके बाबा की दृष्टि बार बार घूम करके सामने हमारी बड़ी दादी बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, बार बार बाबा की दृष्टि उनकी तरफ, दादी जी की तरफ आके रुक जाती थी, और बार बार बाबा जैसे दादी जी को विशेष बल और शक्ति देते थे, फिर सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी दृष्टि देते थे। वो दृश्य भी बड़ा वंडरफुल था, हमारे तो अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य। उसके बाद फिर बाबा एक कदम चले, इस तरीके से उस दिन मुरली चलाने के बाद दरवाजे तक जाते जाते भी बाबा ने जैसे काफी समय लिया, और फिर बाबा हर बच्चे को दृष्टि देते हुए, और बस लाइट का, जैसे कार के अंदर बाबा का शरीर था, ऑरा होता है ना, पूरा लाइट का शरीर में बाबा, बस अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, ऐसा कहते हुए बाबा फिर अपने कमरे की तरफ चले गए। तो वो दादियां बताते हैं, कभी भी पहले बाबा ने ये शब्द विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, ऐसे शब्द कभी नहीं बोले, बस पहली बार। और उस दिन बाबा को यही हो, क्योंकि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्मा थी, पूरा ये तो भान जैसे अपना हो ही गया था, बस ये मेरी साकार रूप में बच्चों से ये मेरी अंतिम मुलाकात है, इस शरीर के द्वारा, बस नैनों के द्वारा। वैसे तो सूक्ष्म में तो बाबा हम बच्चों के साथ है ही है, हम सभी अनुभव करते हैं, कोई भी बात होती है हम बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, और तुरंत ही बाबा की शक्ति का एहसास करते हैं, बाबा की मदद की अनुभूति तुरंत होती है। लेकिन साकार रूप में उस शरीर के द्वारा, जैसे ये मेरा आज अंतिम मिलन है, ऐसा अनुभूति बाबा को, और बाबा कहते चले गए। और उसके बाद बाबा ने, हम सब ने सुना है बाबा का हाथ दादी जी के हाथ में और किस प्रकार से बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन प्रकृति जीत का बाबा का जो प्रमाण और मिला वो बाबा के देह त्याग के बाद 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा और बाबा का संस्कार हुआ 21 तारीख को, क्योंकि सब बच्चों के लेटर आ रहे थे, फोन आ रहे थे, शरीर रखो हम आ रहे हैं, जिसको जो साधन मिला दूर दूर से दौड़ दौड़ के वो आता रहा। हमारी बड़ी दीदी जी, मनमोहनी दीदी जी, जिनका मनमोहनी कॉम्प्लेक्स नाम है ना, वो बना हुआ, तो वो भी बाहर टूर पर गए हुए थे, वो भी 21 तारीख को दोपहर तक पहुंचे और उसके बाद ही फिर बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये कि 3 दिन 3 रात तक बाबा का शरीर रहा, कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया, किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी बाबा का शरीर इतना फ्लेक्सिबल, जैसे नहीं तो शरीर जैसे अकड़न आ जाती है ना जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है कुछ घंटे में ही, लेकिन इतने घंटे के बाद भी शरीर पूरा फ्लेक्सिबल। और स्नान आदि जब 21 तारीख को भी कराया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सम्मुख हमारे ही ये वहां पर देखा हमने व्यक्तिगत, बिल्कुल फ्लेक्सिबल और चमकता हुआ चेहरा, जैसे बस बाबा सोई रहे हैं और अभी उठ के एकदम बोलेंगे आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा तुरंत हाथ जैसे फैला देंगे, बिल्कुल भी न शरीर में जरा भी परिवर्तन नहीं, कोई भी बैड स्मेल नहीं, कोई दुर्गंध आने लगे या शरीर का डिकम्पोजिशन होने लगे। ये प्रकृति जीत का लक्ष्य है, लक्षण है कि हमारे ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, लेकिन आत्मा को बाबा ने इतना सत्व प्रधान और ये शरीर के तत्वों को भी इतना पवित्र कर लिया था कि जो नॉर्मल केस में तत्व जो विकटित होने लगते हैं, 3 दिन तक 3 रात तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही शरीर, वैसा ही चमकता हुआ चेहरा, और बस ये प्रकृति जीत का और लक्षण है। और ये प्रकृति जीत अंत तक, ये तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये हमें अंत तक सहायता देता रहे, इसके लिए बस कुछ ये है एक दो मोटी बातें कि ये जो तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, ये अंत तक हमारा साथ कब देगा, हमारा सहयोगी बनकर रहेगा, न कि ये बाहर के तत्व हमारे दुख का कारण बनेंगे, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे साइक्लोन आ जाए, बहुत तूफान आए, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कब? जबकि हम अपने संस्कारों को तत्वों के संस्कारों के अनुकूल बना देंगे। हमारे संस्कार जब उन तत्वों के संस्कारों के विपरीत रहते हैं ना, तो ये तत्व भी दुख का कारण बन जाते हैं। सतयुग में हम आत्मा सत्व प्रधान होते हैं बिल्कुल, तो ये तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, कोई भी दुख का कारण नहीं बनते। लेकिन कलयुग अंत तक आते आते हम बहुत वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह कमजोरियों के और इन विकारों के वशीभूत, तो ये सारे तत्व भी वैसे ही अहिंसक हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता ये है इन तत्वों को भी पवित्र बनाने की। तो कैसे बनाएंगे ये प्रकृति जीत, प्रकृति से बने हुए तत्व को? बड़ा सहज बात है कि जो प्रकृति के इन तत्वों के गुण हैं, वो गुण हम धारण करते चले। मानो जल है, जल का मुख्य गुण क्या है? शीतलता तो है ही है, लेकिन जल का एक मुख्य गुण है ये फ्लेक्सिबल होना, यानी जल को जिस पात्र में लोगे उस पात्र का रूप धारण कर लेगा। गिलास में लोगे, गिलास में सेट हो जाएगा। थाली में लोगे, थाली में सेट हो जाएगा। चम्मच में लोगे, चम्मच में हो जाएगा। हर चीज के अनुरूप अपने को ढाल लेता है। ऐसी अगर मैं भी अपनी इस बाहर की नेचर तत्व जल के अनुरूप अपने को ढाल लूं, हर व्यक्ति के साथ मैं सेट होके चल सकूं, हर व्यक्ति के अनुरूप मेरा ऐसा नेचर हो जाए, कभी ये न कहें भाई फलानी आत्मा तो बड़ा मुश्किल है इसके साथ रहना, इसका स्वभाव संस्कार के मिलके चलना नहीं, हर चीज के अनुरूप बना लूं। इसका मतलब मैंने जल का गुण धारण कर लिया। अगर किसी के साथ किसी परिस्थिति के साथ सेट होके अगर मैं आत्मा चलती हूं तो फिर कभी भी ये जल तत्व जो है ना हमारे दुख का कारण हमारी मृत्यु का कारण ये नहीं बन सकता। बस आवश्यकता है ये अपने नेचर को हम इतना फ्लेक्सिबल बना लें हरेक के साथ सेट होकर के हम चल सके। सपोज मानो फिर भी इस चीज में समय लगता है तो जल का एक दूसरा गुण ये है कि जल को अग्नि पर रखो थोड़ा उबल भी जाएगा लेकिन सिर्फ उतार के नीचे रख दो दूर तो अपने आप अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मानो कभी ऐसा परिस्थिति, क्योंकि अगर हम पुरुषार्थी हैं अभी, अगर कभी भी आवेश में आ जाते हैं, कोई ईर्ष्या का संस्कार आ गया, द्वेष का, या कोई भी कमजोरी की अगर बात आ भी गई तो तुरंत ही हम उसे रियलाइज करके हम तुरंत उससे विकार से अपने को अलग करने, डिटैच करने, मानो क्रोध के कारण अगर हम क्रोध की अग्नि पर चढ़ के और कोई ऐसा बात बोल दी लेकिन तुरंत ही हमें जल्दी रियलाइज हो जाए और हम अलग कर ले अपने को डिटैच, इसका मतलब ये भी हमने जल का गुण धारण करके अपने को जैसे फिर से पुनः ओरिजिनल स्वरूप, जल का जो ओरिजिनल गुण है शीतलता, उस गुण में अपने को ले आए। हर तत्व का गुण होता है। पृथ्वी का क्या मुख्य गुण है? पृथ्वी का क्या गुण है? सहनशीलता। और भी इससे भी एक बड़ा गुण है, पृथ्वी जो है दाता है, पृथ्वी हमेशा देती है। एक बीज पृथ्वी में बो दो पेड़ उगाएगा और हजारों बीज पैदा हो जाएंगे हर चीज। तो बाबा ने भी जैसे मुरली में भी बोला और अभी बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि आपका भी दाता रूप हो। राजा हमेशा देता है, राजा लेता नहीं है। जो बाबा ने बताया भले आजकल योगी राजा है भले वो लो, लेकिन राजा प्रजा का पालक होता है, देता है। तो ऐसे ही पृथ्वी की तरह ना मैं सदा सबको मेरी देने की भावना हो, सुख का, शुभ भावना, शुभकामना, मीठा बोलना, नम्रता से व्यवहार करना, उससे क्या होगा हम देते चले, इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं, तो देते चले। तो जितना जितना हम ये चीज देते चलेंगे हम पृथ्वी के अनुकूल अपने को ढालते चल रहे हैं, पृथ्वी का गुण धारण करते चल रहे हैं। तो चाहे जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएगा, पृथ्वी हलचल में आएगी, पूरे बहुत लोग मरेंगे जैसा बाबा ने बताया, प्रकृति बहुत हलचल दिखाएगी, लेकिन अगर हमने ये गुण धारण कर लिया, पृथ्वी के संस्कार को हमने अपना संस्कार बना लिया, तो चाहे जितना भी अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी हमारी मित्र बन गई है, अब मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, उसकी समय पर मदद करता है, तो इस कारण से ये हमारे बचाव का एक साधन बन जाएगा। और ये संस्कार जो है हमारा सतयुग के आदि से चलता रहेगा। इस समय जो संस्कार ये धारण किया इन तत्वों का, ये आदि से लेकर अंत तक चलेगा, लेकिन समय यही है धारण करने का। ये पृथ्वी का हो गया, हा? और क्या होता है? वायु का क्या गुण होता है? वायु का गुण है हल्का होना। बस उड़ते रहो और उड़ाते रहो, गीत भी है ना। तो देखो हल्की चीज होती है वो ऊपर उड़ती है, भारी चीज नीचे आती है। तो वायु का अगर हम ये गुण धारण कर लेंगे कि हम सदा हल्के रहेंगे, कोई परीक्षा आए, कोई परिस्थिति आए, लेकिन हम भारी नहीं होंगे कभी। अब भारी होने का लक्षण क्या होता है? कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, बस आदमी को एकदम ऐसा लगता है बस मैं किसी से ना बोलूं, बिल्कुल अलग हो जाता है। नहीं, हल्के, जितना व्यक्ति हल्का रहेगा वायु की तरह हल्का, तो वो ऊपर उठता रहेगा, और भारी चीज नीचे आती है। तो हम वायु से ये गुण धारण कर लें कि मुझे सदा हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में हल्का रहना है, भारी नहीं होना है। तो ये होगा जिससे जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, बहुत तेज हवा चलेगी, अंत में ये भी तत्व अपना भयानक रूप दिखाएगा। लेकिन जितना भी ये भयानक रूप हो, ये हमारे दुख का कारण, हमारी अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अनुरूप हमने अपने को ढाल लिया है। और साथ में सूर्य का क्या गुण होता है? सूर्य अग्नि का स्वरूप है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश बोलते हैं ना पांच तत्व, तो अग्नि का स्वरूप होता है कि अग्नि में कोई भी चीज को डाल दो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, अब हमारा योग की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ज्वालामुखी योग, जो बाबा ने बताया। जब ऐसी योग की स्थिति होगी, और जो बाबा ने कहा है कि दुखी आत्मा आए सुख का अनुभव करके जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति करती हुई जाए, रूप परिवर्तन उसका तब होगा जब हमने अपना ये ज्वालामुखी योग का खुद अपने को स्वरूप बनाया हुआ होगा। और आकाश का क्या गुण होता है? आकाश विशाल होता है। जो बाबा की मुरलियां पिछले काफी दिन से चल रही है, बड़ा दिल रखो, फिराक दिल रखो, और बड़े दिल बनके सब आत्माओं को देते चलो, फिराक दिल होके। तो ऐसी आकाश की तरह, और आकाश के गुण को हम लोगों ने यूज किया है मनुष्यों ने कम्युनिकेशन में। आज टीवी होता है, रेडियो है, मोबाइल है, एक सेकंड में ही कहीं से कहीं बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और बस कहीं से भी, दुनिया के किसी कोने से भी बात कर सकते हैं या उसका रूप देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी कोने से दूसरे कोने तक। ऐसे ही आकाश के जितने हमारी विशालता हमारे दिल में, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा का दिल बहुत विशाल है, सारी दुनिया के बच्चे उसमें समा जाते हैं, ऐसे ही हम बच्चों का भी दिल विशाल हो, किसी की कमी कमजोरी को हम अपने अंदर धारण न करें। कोई व्यक्ति की अगर कोई बात होती है, उसकी कमी, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो हमें तुरंत उसकी वो बात याद आ जाएगी, और हमारा व्यवहार वैसा ही होने लगता है जैसा उस व्यक्ति ने व्यवहार किया है। कोई बहुत अच्छे व्यवहार वाला आता है, हमारा बहुत अच्छा व्यवहार होता है, किसी ने हमारे साथ उतना अच्छा नहीं किया होता है, हमारे व्यवहार में भी वैसा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन विशाल का यही लक्षण है, आकाश है, विशाल है, उसका उसमें किसी का भी भेदभाव नहीं है। ऐसे ही कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन मेरे मन में उसके लिए भेदभाव न हो, ये आत्मा ऐसी है तो मेरा ऐसा व्यवहार हो, नहीं। हरेक के प्रति मैं दाता हूँ, भगवान के बच्चा हूँ, जो बाबा कहता है फिराक दिल, ऐसा होके जब हम रहेंगे तो ये सब बाबा में जो लक्षण देखे कि 72 घंटे के बाद भी जब अग्नि को शरीर विसर्जित किया गया, बिल्कुल वैसा ही, ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो अभी हम सब लोगों को बस अंत में यही बाबा संदेश देना चाहता है कि दोनों प्रकृति के विजेता भव। दोनों प्रकृति माने, एक हमारी प्रकृति यानी स्वभाव संस्कार पुराना, जो कि द्वापर युग से हमारा लिया हुआ संस्कार है वो, और दूसरा ये प्रकृति के पांच तत्व, जो कि ये पांच तत्व हैं, इनको भी हम ऐसा शुद्ध कर दें, पवित्र बना दें कि ये तत्व जो आदि से हमारे साथ रहने वाले हैं, केवल यही तत्व हैं जो सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक इस शरीर के रूप में हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन से हमारा शरीर, बल्कि माता के गर्भ में भी आता है, तब से हमारी आत्मा का जैसे वो साथी बन जाता है। तो इसलिए जब ये तत्व हमारे हमेशा के साथी हैं, तो इन तत्वों के साथ तो हमारी ऐसी अभिन्न मित्रता हो जो ये साथ हमारा अंत तक निभाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।